सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आप सभी भाई बहनों से मेरा नम्र निवेदन है, अपने अपने स्थान पर आप जरूर बैठ जाइए और हम सभी के समक्ष परमादरणीय जयंती दीदी जी पधार चुके हैं, तो हम सभी जोरदार तालियों से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही मैं बहनों से अनुरोध करना चाहूंगी कि गुलदस्ते के द्वारा दीदी का स्वागत करें। मुस्कान आपकी ईश्वरीय वरदान है आदरणीय दीदी जी, मुस्कान आपकी ईश्वरीय वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए खुदा हम पर मेहरबान है, आप आए खुदा हम पर मेहरबान है। बड़े नसीब वाले हैं हम कि आज हम बड़े ही महान फरिश्ते से मिल रहे हैं। आदरणीय जयंती दीदी जी का हम संक्षिप्त परिचय सुनेंगे। आप सीनियर राजयोगा टीचर हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था में लगभग 50 वर्षों से अधिक आप ईश्वरीय सेवा में जुड़े हुए हैं। हमारे समक्ष उपस्थित हैं, आप एडिशनल चीफ भी हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की। आप यूरोप तथा मध्य पूर्व देशों में ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों की आप डायरेक्टर भी हैं। आप संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रह्मा कुमारीज एनजीओ की भी आप प्रतिनिधि हैं। आप महिलाओं के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए ईश्वरीय सेवाएं अपनी प्रदान करती रहती हैं। भारत तो क्या, विश्व के कोने कोने में आप ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। और हम सभी जानते हैं हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी, उनके अंग संग रह करके आपने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया है। तो आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम दीदी जी से सुनेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे। तो हम सभी बड़े ही ध्यानपूर्वक अभी दीदी जी से सुनेंगे। आदरणीय जयंती दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति। मेरा भाग्य है कि आप सबका पहले स्वागत करने का मौका बना है। आप सब मोस्ट वेलकम यहाँ शांतिवन में। आबू में ही अपना हेडक्वार्टर्स 1950 से लेकर चल रहे हैं। पहले ऊपर अपना हेडक्वार्टर्स रहा, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ऊपर माउंट पर भी जाने का मौका बनेगा, जहाँ अपना पहला आश्रम था, फिर और एक्सपेंशन ज्ञान सरोवर में रही ऊपर ही, और फिर कुछ समय पहले यहाँ शांतिवन में कार्य आरंभ किया। संख्या बढ़ती गई तो स्थान भी ऐड होते गए। तो आज की टॉपिक जो है मन की हीलिंग और धरती अथवा प्रकृति की हीलिंग, उसमें आप समझ सकते हैं कि आजकल जो मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, किस समय ठंडी आएंगी, कब गर्मी आएंगी, कब तक चलेंगी, कितने टेम्परेचर तक पहुंचेंगी, पानी आता नहीं आता, कुछ भरोसा नहीं। तो देखते हैं कि इसके कारण क्या है। मुझे लगता है कि आप सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि पहले तो आंतरिक आत्मा और आत्मा के अंदर हमारा मन, हमारे मन की स्थिति का इम्पैक्ट इस शरीर पर भी होता। कौन इस बात को स्वीकृति करते हैं कि हाँ मन का तन पर इम्पैक्ट है? कई है जो इस विषय को जानती हैं। मैं समझती करीब 40 वर्ष से होलिस्टिक हेल्थ का बहुत प्रचार विदेश में रहा है। भारत में तो आदि समय से जानते थे कि मन की बीमारी के कारण ही तन की बीमारी आती, परंतु विदेश में भी जो रिसर्च हो चुकी है वो भी इसी बात को स्वीकार करती कि कोई कहेगा 75%, कोई कहेगा 90% साइकोसोमैटिक इलनेस होती, मन का तन के ऊपर प्रभाव। तो ये तो फर्स्ट स्टेप, परंतु दूसरा फिर आज संसार की हालतों देख करके कई इस निर्णय तक पहुंचे हैं कि हमारा मन न सिर्फ इस तन की प्रकृति पर प्रभाव डालता, परंतु हमारे मन का प्रभाव बाहर की प्रकृति पर भी अथवा पांचों ही तत्वों पर उसका इम्पैक्ट होता। तो शुरू कहाँ से करें, क्योंकि प्रकृति का भी मन के ऊपर असर होता और वाइस वर्सा, तो न सिर्फ तन परंतु प्रकृति का भी मन के ऊपर प्रभाव पड़ता। मानो कि जैसे कई स्कैंडिनेविया के देश है जहाँ सर्दियों के समय, मतलब कि नवंबर मार्च से लेकर अप्रैल मई तक सूर्य देखने को ही नहीं मिलता, रोशनी भी थोड़ी बहुत होती है, 9 बजे तक सवेरे लाइट ऑन चालू होती, फिर 3 बजे से फिर लाइट्स को ऑन करना होता, तो बहुत ही कम डे लाइट का मौसम होता और उस कारण से मन के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता। तो है तो दोनों बातें, मन और तन और प्रकृति, और प्रकृति और तन और मन, परंतु शुरू कहाँ से करें। हर बात में जो चैतन्य शक्ति है वहाँ से शुरू की जाती है। तो चैतन्य शक्ति कौन? चैतन्य शक्ति मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच विराजमान हूँ और मेरा इम्पैक्ट इस तन के ऊपर हो रहा। और कोई समय था जबकि खुद की पहचान थी तो उसमें उस स्वराज के आधार पर आत्मा राजा थी इस तन की, परंतु अभी वो बात छूट गई है। और अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे सिचुएशंस में मन अथवा आत्मा को भूल गए हैं और तन के आधार पर ही सब कुछ चल रहा। और आप देखेंगे कि उसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा है। क्यों? क्योंकि मन को भूल जाने से जो आत्मा के अंदर मूल्य है, गुण है, वैल्यूज है, उसका संबंध ही नहीं रहा। ये जो डिसकनेक्ट हो गया है खुद के साथ, तो फिर जो वैल्यूज है आत्मा के अंदर, उसमें आप 5 बातें नोट कर सकते हैं। आत्मा की आदि स्वरूप की स्थिति किस प्रकार से थी? मन के अंदर शांति, प्रेम, पवित्रता, सत्यता और आनंद, ये 5 गुण हर आत्मा के अंदर है। परंतु रियलिटी क्या देख रहे हैं आज? हम चाहते हैं शांति मिले तो हम कोई सुंदर स्थान पर जाएं, बीच पर जाएं, फॉरेस्ट में जाएं, परंतु वहाँ पर जाने से कोई मन शांत नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि पड़ोस में कोई अपना म्यूजिक चला रहा है, उसमें हमारी घबरावट होती, या बीच पर बैठे हैं और कोई बहुत ज़ोर शोर से फ़ोन पर बातचीत कर रहा है। तो कहने का मतलब कि शांति हम ढूंढते हैं बाहर, परंतु रियलिटी है शांति है अपने अंदर। हम सुख ढूंढते हैं बाहर, नई गाड़ी खरीद की आदत, ये सब बातें आप जानते हैं, परंतु एक दिन की खुशी और फिर उसके बाद हमारे पड़ोसी ने मेरे से और बढ़िया गाड़ी ली तो मेरी खुशी कहाँ चली गई? बिल्कुल खिड़की से उड़ के चले गई। क्यों? क्योंकि फिर मन में इच्छा होती कि उससे भी बेहतर हमें गाड़ी मिले। तो सुख भी बाहर तो ढूंढने से स्थायी सुख हमें नहीं अनुभव होता, परंतु जब हम अंदर की यात्रा करते हैं तो हमें ये सब अनुभव हो सकते हैं। शांति, सुख, प्रेम, सत्यता, पवित्रता। तो आज की स्थिति खुद के साथ कनेक्शन गुम होने कारण देखते हैं कि सुख शांति के बजाय आत्मा के अंदर अनेक प्रकार के दुख, अशांति, भय आदि, चिंता आदि सब कुछ अंदर की फीलिंग महसूस हो रही है। किसको खालीपन है, किसको डिप्रेशन है, भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियां आ गई है। और ये जो मानसिक बीमारियां हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि उसका कारण है पांच बातें। आत्मा का स्वरूप पांच गुण और आत्मा की बीमारियों का कारण पांच विकार। मानो कि जिस समय क्रोध आता, आत्मा भी जलती खुद है और जिसके संबंध में आते हैं उन्हों को भी हम जलाते हैं, वातावरण को भी हम गर्म कर लेते हैं। जिस समय लोभ आता तो औरों की कोई परवाह नहीं, मुझे ही मिले और जितनी मेरे पास है जरूरत से अधिक पहले से ही मैं कहेंगी और भी मुझे ही मिले, मुझे ही मिले। तो जो ओवर कंसम्पशन है उसका हम देखते हैं कि प्रकृति पर क्या इम्पैक्ट रहा है। आज कहते हैं कि जितनी प्रकृति के रिसोर्सेस है उससे तीन गुना अधिक मानव यूज कर रहा है। तो ये कब तक चलेगा खुद ही आप अंदाज लगा सकते। और फिर मोह, मोह व्यक्ति में, चीजों में, और फिर वो बात कोई भी कारण से छूट जाती तो आत्मा को अति परेशानी होती। उसमें भी फिर कई प्रकार की आदतें शुरू हो जाती जिससे और ही बीमारियां बढ़ती जाती। और फिर ईगो, अहंकार, अभिमान, उसमें तो मानव का जो ब्रदरली लव होना चाहिए एक परिवार के नाते से, एक ईश्वर के संतान के नाते से, वो तो छूट गया और कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट में हम आ गए। आप जो ये दो बड़े युद्ध चल रहे हैं विश्व के अंदर, चाहे मिडल ईस्ट को देखें, चाहे यूक्रेन को देखें, उसमें न सिर्फ मनुष्य के ऊपर असर आया है परंतु प्रकृति की भी कितनी नुकसान हो चुकी है सब तरफ। तो जब ईगो आता है, ईगो के कारण फिर अहंकार के वश क्रोध भी आ जाता, परंतु उसका भी नुकसान न सिर्फ आत्मा के लिए परंतु प्रकृति के ऊपर भी हम देखते हैं कि उसका नतीजा क्या हो रहा। क्रोध कहते हैं काम, काम फर्स्ट इन फैक्ट लस्ट, उसमें भी जो मनुष्य आत्मा का मनुष्य के प्रति एक शुभ भावना और एक प्यार का नाता हो उसमें एक वायलेंस का रूप ले लिया, प्यार तो छूट ही जाता। तो प्रकृति ने हमें हजारों वर्षों से पालना दी है, तभी धरती को भी माँ कहती हैं, उसका पालना का स्वरूप है। परंतु जिसने हमें इतनी पालना दी और इतना हमें सुख दिया, आज तक भी कलयुग की अंतिम घड़ियों में भी फिर भी हम चाहेंगे कि प्रकृति द्वारा हमें कुछ सुंदरता मिले, कुछ शांति मिले, कुछ एकांत मिले। तो आज तक भी हम ले रहे हैं, हमें प्रकृति द्वारा भोजन प्राप्त होता है, पानी मिलता, हवा मिलती, कोविड के समय एक सिलेंडर के लिए कितने हैरान होते थे, और भगवान ने तो हमको इतने वर्षों से सब कुछ फ्री दिया है। तो आप सोचो कि प्रकृति ने जो हमारी सेवा की है, हमने रिटर्न में प्रकृति को क्या दिया? हमने प्रकृति को हिंसा दी, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, वायलेंस हुआ, हम लेते ही रहे, लेते ही रहे, लेते ही रहे। हाँ, कोई समय ऐसा भी था मेरे ही बचपन के दिनों में, लंदन में मैं पढ़ती थी, तो वहाँ पर भी स्कूल में जिस समय दोपहर का भोजन होता था, कहते थे पहले प्रार्थना करो, भगवान को, नेचर को थैंक्स दो। आज शायद कोई मुश्किल से ऐसे स्कूल्स होंगे जहाँ बच्चों को ये बात सिखाई जाती, और मुश्किल से कहाँ पर घर होंगे जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को ये शिक्षा देते कि प्रकृति को पहले ग्रैटिट्यूड अथवा थैंक्स दो और फिर अपना भोजन पान करो। तो संसार कुछ बदल गया, और जो लेने की भावना रही है वो बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँची है, जो आंखें बंद हो गई है और हम ये देख नहीं रहे हैं कि कितना नुकसान हमने प्रकृति को पहुँचाया है। मैं क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस में 2009 से जाती रही हूँ, उसमें सिर्फ दो बारी मिस हुआ कुछ कारणों से, परंतु हर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में एक ही बात साइंटिस्ट्स बताते हैं कि अभी जो मानव ने जिस तरह से मटेरियलिज्म, कंस्यूमरिज्म को आगे बढ़ाते उसको ही वजन दिया है और प्रकृति का भी सोचा ही नहीं है, तो अभी तो जो पहले व्हाइट माउंटेन्स थे अंटार्कटिका में, हमारी एक बहन है जो वहाँ गई थी पिछले वर्ष, आंखों देखी हुई उसकी बात थी, कहती कि अभी तो ब्राउन माउंटेन्स थे, जो धरती को ठंडक देने वाले माउंटेन्स थे, वो भी ग्लेशियर्स भी बिल्कुल चेंज होते गए हैं। मैं आइसलैंड में कई बारी जाती ही रही हूँ, और पहले जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी 20 वर्ष पहले, तो जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स थे अभी यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए हैं, रिसीड होते गए हैं, कम होते गए हैं। आप सोचो कि हिमालयस का जो ग्लेशियर्स है, जैसे ही जिस गति से मेल्ट होते जा रहे हैं, मिलियंस मिलियंस लोगों का जीवन उस पानी पर आधार है। कितना समय लगेगा सब ग्लेशियर्स को बिल्कुल समाप्त होने में? जितना साइंटिस्ट ने टाइम स्पैन दिया था, पहले तो कहते थे कुछ वर्ष पहले 50 वर्ष में ये सब कुछ होगा, मेल्टिंग ऑफ द आइस, परंतु 10-15 वर्ष के अंदर वो सब कुछ हो चुका। तो ये है आज की हालत, मानव खुद को भूला हुआ है, अपने वैल्यूज से बिल्कुल डिसकनेक्ट हो चुका है, और उसका असर फिर प्रकृति मानव का मानव पर भी है, परंतु ये भी हम देखते हैं कि मानव का प्रकृति पर कितना इम्पैक्ट हो रहा है। तो आज हम क्या कर सकते? मुझे लगता है कि पहले तो हमें खुद की हीलिंग करनी होगी, और उस हीलिंग शक्ति से फिर हम प्रकृति को भी कुछ सहयोग दे सकेंगे, कुछ मदद दे सकेंगे। पहले जो हम समझते थे कि मानव की जीवन का बहुत मूल्य है, आज तो मनुष्य की वैल्यू क्या है वो भी देख रहे हैं, परंतु पहले हम सोचते थे कि नेचर इज सेक्रेड, प्रकृति का भी कुछ विशेष स्थान है, सेक्रेड है। प्राणी, हर प्राणी के लिए हम समझते हैं कि जो जीव जंतु है, बड़े प्राणी तो छोड़ो परंतु जीव जंतु का भी अधिकार है, इस प्लैनेट पर रहने के लिए, परंतु आज मानव की वृत्ति कुछ बदल चुकी है और हालत अभी देख रहे हैं। सोल्यूशन बाहर जितना भी हम कोशिश करते हैं सोल्यूशन ढूंढने में, वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। सब बातें और ही मुश्किलात बढ़ती जा रही है। और पहले तो सोचते थे कि चलो दूर देशों में कुछ असर उसका हो रहा, परंतु आप सोचो कि प्लैनेट एक नाव है, हम सब इकट्ठे एक ही नाव में बैठे हैं। यदि उस नाव के किनारे पर पानी अंदर आ रहा है और हम कहीं नहीं खर्चा नहीं है, भले आने दो, परंतु जब हमारे पांव तक पहुंचेगा तो हम क्या कहेंगे? और पानी को वहां नाव से हमारे पांव तक पहुंचने में कितनी देरी होती? तो जिस समय वाइल्ड फायर्स हम देखते हैं स्पेन में, लॉस एंजलिस में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब देशों में, तो लगता है कि प्रकृति हर तरफ मनुष्य से बहुत नाराज हो चुकी है, क्योंकि मानव ने उसका सारी जो बैलेंस है, हार्मनी है, उसको तोड़ डाली है। तो अब परमात्म याद के द्वारा, आत्मस्मृति के द्वारा हम वो शक्ति ले जो अंदर में अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उसके ऊपर हम जीत प्राप्त करते जाएं। मन के स्थिति को हम फिर से पवित्र, शुद्ध, शांत बनाएं, तो वो जो मानव के वाइब्रेशंस है वो अवश्य ही प्रकृति तक भी पहुंचेंगे। आजकल ये तो हम समझते हैं कि वाइब्रेशंस आर अ रियलिटी, ऐसे नहीं कि वाइब्रेशंस कोई हमारी इमेजिनेशन है। साइंस के हिसाब से भी प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे संकल्प है उसका प्रभाव न सिर्फ मेरे अंदर आता, आप शुद्ध संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, तो आपका तन भी शांत अथवा शीतल बन जाता। मन के अंदर क्रोध आता, आपका ब्लड प्रेशर कहाँ तक पहुँचता, हार्ट रेट को क्या हो जाता, ये भी सब बातें आप लोग जानती हैं। परंतु मन की शांति के द्वारा हम वो वाइब्रेशंस भेज सकते, मन की पवित्रता की शक्ति के द्वारा हम फिर से अशुद्ध प्रकृति को फिर से शुद्ध बना सकते, परंतु पहले चाहिए अपने मन की हीलिंग। तो परमात्मा की याद और फिर साथ साथ अपने आदि स्वरूप की स्मृति के द्वारा, जब हम अपने अंदर के नेगेटिव बातों को समाप्त करके जो अपना आदि स्वरूप है उस आदि स्वरूप को फिर से प्रकट करेंगे, बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अपना कोई असली स्वरूप होता उस बात को याद करना मुश्किल नहीं है। कोई आपको हम कहें नई बात सीखो, वो अलग बात है, ऐसी बात नहीं। जो अपना ही खजाना है जो हम भूले हुए हैं, उस खजाने के लिए हमको चाबी मिल जाती है तो कितना समय लगेगा उस खजाने को फिर से अनुभव करने में? बस बहुत जल्दी का काम है। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। आप लोग यहाँ पहुँचते ही कईयों के मुख से ये सुना होगा, ओम शांति, ओम शांति। और अपनी दादी जानकी जी वो तीन बारी ओम शांति कहती थी। क्यों? पहले ओम शांति, मैं कौन हूँ? दूसरी ओम शांति, मैं किसकी हूँ? और तीसरी ओम शांति, अब मुझे क्या करना है? तो ये तीन ओम शांति से ही मुझे लगता है खुद का परिवर्तन और प्रकृति का भी परिवर्तन बहुत सहज रीति से संभव है। एक एग्जांपल जो मैंने कहा कि मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म के कारण हम देख रहे हैं कि सृष्टि पर कितना बर्डन आया है, कितना उसका असर आया है। आप सोचो कि जब हमें अंदर की यात्रा करके हमें शांति और सुख का अनुभव होने लगता, क्यों? क्योंकि आत्मा का वो आदि स्वरूप है। अंदर जाओ, वो आपको अनुभव हो, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में एक सिंप्लिसिटी बहुत सहज रीति से आ जाती है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कितने कपड़े आपके क्लोज़ेट में, अपनी कबट में अभी से पहले से ही है, और फिर भी कोई अच्छी चीज़ देखी, सुंदर चीज़ देखी, ले लेते, ज़रूरत नहीं है। अपने नीड्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और उसमें कोई अपने को कोई कठिनाई देने की बात नहीं है, परंतु अपने मन को अंदर की यात्रा के द्वारा संतुष्ट करने की बात है। जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है अपने आंतरिक प्राप्ति के द्वारा, तो फिर तो कोई ये नहीं कहेगा ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और जिस समय हमें ये भावना आएंगी कि हम सब एक ही परिवार के हैं और एक ही धरती हम सब का घर है, तो हम बाउंड्रीज किस बात में नहीं रखेंगे, परंतु हम सोचेंगे कि जो कुछ मेरे पास है वो शेयर करें, वो सबके साथ हम बांट के मिल करके आगे बढ़ें। और उसमें फिर ये भी बात आती कि हम जानते हैं कि जो विश्व की समस्याएं हैं और खास करके एनवायरनमेंट की समस्याएं हैं, वो एक देश अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जिस समय वाइल्ड फायर्स एक स्थान पर शुरू होते, फायर तो कहाँ पर भी पहुँच सकती और पहुँचती भी है। फायर को मालूम नहीं है कि ये है बाउंड्री, परंतु फायर तो छोड़ो, जो स्मोक वहाँ से निकलती है वो भी सब तरफ फैल जाती है। उसमें भी स्मोक को कोई लिमिट नहीं होती। वोल्केनो एक स्थान पर जिस समय इरप्ट हुआ था आइसलैंड का कुछ वर्ष पहले, 3/4 वर्ल्ड का एयरलाइंस के फ्लाइट बंद हो गए, क्योंकि सब तरफ वो एशेस फैलती गई। तो ये बिल्कुल प्रूफ है कि हम कितनी भी मैप बना करके पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाएं, परंतु पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो उस समय कुछ काम की नहीं होती। जो कुछ नुकसान होता है, कहाँ स्विट्जरलैंड में कुछ समय पहले केमिकल फैक्ट्रीज पर कुछ नुकसान हुआ था और पानी में सारा वो आ गया था, सारी पॉइजन, तो जहाँ स्विट्जरलैंड के माउंटेन से जर्मनी तक आए, तो सिर्फ स्विट्जरलैंड के लोगों को तकलीफ नहीं हुई, जो नीचे वाले हैं जर्मनी में बैठे हुए उन सबको भी तकलीफ हुई। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो चलो मानव ने बना करके उसको फिक्स कर दी है, परंतु रियलिटी ये है, एक धरती, एक आकाश और एक ही सागर सब तरफ घूम रहा है। हवा भी यहाँ से वहाँ तक पहुँची जाती है। आज बताते हैं कि हर मानव के शरीर के अंदर और हर प्राणी के, चाहे मछली हो, चाहे बर्ड्स हो जो आर्कटिक में हैं, हर प्राणी के अंदर, ये अपना ट्रैफिक कंट्रोल है, 3 मिनट के लिए मन को शांति में परमात्मा की याद में बैठती।
Good. योगी जीवन है सारा। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा।
मन को फिर से शांति का अनुभव कराने के लिए ये बीच बीच में गीत बजता और वो हमें सिग्नल देता कि बस 3 मिनट के लिए मन को शांत करके परमात्मा की याद में बैठकर फिर से उनसे वो पतित पावन बाप द्वारा हम पावन बनने की शक्ति लेते रहें और आत्मा को फिर से शांति का अनुभव करा सकें। मैं आपको बता रही थी केमिकल्स की बात। तो विश्व भर में हर प्राणी के शरीर के अंदर 500 से अधिक एक्स्ट्रा केमिकल्स आ चुकी है। उसका इम्पैक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर हो रहा, उसका इम्पैक्ट हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर हो रहा, ये सब बातें आज की रियलिटी है। तो इन सब बातों को चेंज हो सकता, आप लोगों को यहाँ बुलाया है भविष्य का एक नया विजन देने के लिए, उम्मीद का तारा जगाने के लिए। तो बैड न्यूज़ तो बहुत होती, परंतु गुड न्यूज़ भी ये है कि हाँ, कोई भी कपड़ा मैला होता फिर से उसको साफ भी कर सकते, कोई भी चीज़ पुरानी होती उसको फिर से रिजुविनेट कर सकते, रिन्यूअल हो सकता। और आत्मा तो अनादि अविनाशी है, तो आत्मा की हीलिंग, आत्मा की रिन्यूअल, आत्मा की फिर से सिंपल बातों में हम जागृत करें तो हम ही निमित्त बन सकते हैं विश्व के परिवर्तन के लिए। आप सोचो कि कई बार ये संकल्प आता हम अकेले क्या कर सकते, परंतु एक कैंडल है, एक दिया है। अभी दिवाली के दिन आ रहे हैं, आप लोगों को मालूम है एक दिया से अनेक दिए जग सकते हैं, पूरी दीप माला बन सकती। तो एक आत्मा भी यहाँ से नई इंस्पिरेशन लेके जाए, नया उमंग लेके जाए, उससे मुझे पूरा ही विश्वास है कि उस एक आत्मा के द्वारा भी अनेकों की जागृति आ सकती। और आज तो हम सब कितने इकट्ठे हुए हैं यहाँ, और आज जो सभा है वो कोई साधारण सभा नहीं है। मेरे सामने ही कोई विशेष आत्माएं बैठी है, और भी सभा में मैं शायद आप लोगों को जानती नहीं हूँ, परंतु बहुत सारी विशेष आत्माएं हैं। तो एक एक का इम्पैक्ट कितनों के ऊपर पड़ता। एक एक्सपेरिमेंट चली थी हार्वर्ड में, उन्होंने देखा था, एक्सपेरिमेंट की कहानी है, मैं नहीं सुनाती हूँ अभी, परंतु उन्होंने ये बिल्कुल प्रूफ करके दिया कि एक व्यक्ति एक शुभ काम करता है, वन एक्ट ऑफ काइंडनेस, 125 लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता। आप सोचो एक व्यक्ति का, ऑन वन, ऑन द नेक्स्ट, ऑन द नेक्स्ट। जी बिल्कुल, तालियां बजाओ। तो ये कितनी सुंदर बात है, एक अच्छा कर्म 125 को प्रेरणा दे सकता। और जिस रीति से आप लोगों का कार्य है, व्यवहार है, आप लोगों का तो इम्पैक्ट सिर्फ 125 तक नहीं, हजारों तक तो क्या शायद लाखों तक भी पहुंच सके, इतना। तो इस कॉन्फ्रेंस में आने का मुझे लगता है कि विश्व में एक नया मोड़ आ सकता। पहले तो मेरे जीवन में नया मोड़ आए, फिर तो हाँ एक एक निमित्त बन सकता है अनेकों के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रकृति का परिवर्तन एक तो हो सकता है सिंप्लिसिटी के द्वारा, दूसरा होता है अहिंसा के द्वारा। भारत में अहिंसा का नियम गांधी जी ने हमें याद दिलाया, परंतु नियम तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, बहुत समय का, कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो यदि हम अहिंसा को पालन करें, नेचर को फिर से उस रिस्पेक्ट से देखें, सेक्रेट माने, तो भी बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता। और उसमें भी मैं ये भी कहेंगे कि भारत का जो पहले भोजन होता था सात्विक होता था, आज कुछ बदल गया है। तो मैं डिटेल नहीं बताती, परंतु यदि हमारा भोजन भी अहिंसा की तरफ हो तो उससे भी बहुत कुछ फर्क हो सकता। तीसरी बात मैं ये भी कहेंगी कि यदि हम लोग यहाँ पर, आप देखेंगे रूरल एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चरल विंग का किस तरह से नॉन वायलेंट एग्रीकल्चर है, जिसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को नहीं यूज करते, परंतु उसका भी बहुत बहुत सुंदर उसका इम्पैक्ट होता, पॉजिटिव इम्पैक्ट। चार यूनिवर्सिटीज अलग अलग रीति से उसका भी रिसर्च करके डॉक्यूमेंटेशन कर रही हैं, परंतु हर बात में अहिंसा को याद करें, नेचर सेक्रेड है, उसको हम उस तरह से रिस्पेक्ट से रखें। जब मैं छोटी थी तो मेरी माता जी और ग्रैंड मदर मुझे कहते थे, धरती पर ऐसे चलो जो धरती को दुख न मिले। आप सोचो जिस तरह से कई बारी आज हम ठप ठप करके धरती पर भी चलते हैं, धरती को भी हम दुख दे रहे हैं, परंतु वॉक लाइटली ऑन द अर्थ, और जितना मेरी जरूरत है प्रकृति के द्वारा वो मैं लूँ, न कि मैं कहूँ कि मुझे ही चाहिए मुझे ही चाहिए, जो मेरी ज़रूरत है और बाकी सबके साथ बांट करके मिल करके शेयर करें। मैं दो एग्जांपल्स देने चाहती हूँ, एक तो मानव का एग्जांपल। दादी जानकी को आप कहीं है यहाँ जो मिले थे कुछ समय पहले, वो इस कार्य का चीफ रह चुकी थी और 92 इयर्स एज में उसने नया जॉब लिया था। आप सोचो 92 इयर्स एज में, आप तो कहेंगे पता नहीं हम किस हालत में होंगे और शायद हम तो धूप में सिर्फ घंटे घंटे बैठ करके आराम करें, परंतु 92 इयर्स एज में वो चीफ बनी ब्रह्मा कुमारीज की। उससे पूर्व दादी विदेश में अधिक सेवाएं करती थी, भारत में भी, परंतु फिर ज़्यादा रहना बाहर होता था। परंतु दादी की आयु 104 तक चली और 104 तक भी दादी जान की सेवा में व्यस्त थी। लास्ट स्टॉप दादी का था बेंगलोर में और तब तक दादी 104 तक पहुंच चुकी थी। और दादी की ऐसी कोई प्रकृति बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत हो, इट वॉज वेरी फ्रेजाइल, कभी कहाँ कुछ होता था कभी कहाँ कुछ होता था, परंतु हिम्मत से, सेवा भावना से और सबकी दुआओं से इतनी लंबी आयु चलती रही। तो यदि हम भी अपने को, मन को हील करते हैं तो तन भी हमारा पूरा ही सहयोगी बन करके हमें साथ देता। ये तो कई बार आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, वैसे कहेंगे हम तो थक गए, परंतु जहाँ कुछ सेवा की पुल पुकार होती तो आप कहेंगे कि औरों को मेरी ज़रूरत है तो अभी तो मैं नहीं सोएंगे, मैं बाद में सोएंगे, और फिर आप सेवा पर जाते तो वो थकान भी दूर हो जाती। कईयों को इस बात का अनुभव होगा मैं समझती, क्योंकि आप में से बहुत बहुत सारे सेवाधारी हैं। तो सेवा करते चलो, दुआएं इकट्ठी करते चलो, भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती रहे तो लंबी आयु तो सहज है। और फिर प्रैक्टिकल प्रकृति की विवाद हम मैं आपको बताएंगे। माउंट आबू में आप जाएंगे तो आप जब ज्ञान सरोवर देखेंगे उसके साथ साथ जानकी पार्क है और उसके पहाड़ के ऊपर भी उसका सारा चलता, और बहुत बड़ी जमीन है वहाँ भी जहाँ पर प्लांटेशन किया हुआ है। ये जमीन हमको क्यों मिली? वो थी दूध वालों की जमीन, और कुछ समय पहले एट द एंड ऑफ द 80s शायद उन्होंने आकर के दादी जी दादी प्रकाश मणि जो उस समय संस्था की प्रमुख थी, जिसने भी अपनी जीवन 14 वर्ष की आयु से लास्ट तक सेवा की, तो उसको आकर के कहते थे दादी जी आपको यदि और ज़मीन चाहिए क्योंकि आपकी संस्था बढ़ती जा रही है आप हमारी ज़मीन ले लो। तो पूछा क्यों क्या हुआ? तो कहती कि ज़मीन अभी कलराठी ज़मीन हो चुकी है, इनफर्टाइल है, तो जो हमारी गायें हैं उन्हों को कुछ मिलता नहीं है, तो हम सारा ही गांव स्टॉक एवरीथिंग हम मूव करके दूसरी जगह ढूंढेंगे जहां पर हम अपना धंधा कर सके। तो वो हम लोगों को तो उस समय कोई एग्रीकल्चर की बात नहीं थी, वो थी कॉन्फ्रेंसेस आदि की। तो जो अपनी वैल्यू बेस्ड एकेडमी है ऊपर ज्ञान सरोवर में, वो हम लोगों ने ज़मीन ली। और फिर बिल्डिंग्स के लिए भी कंस्ट्रक्शन वालों ने फॉरेस्ट वालों ने कहा कि आपको ट्रीज नहीं कट करने हैं, आपको रॉक्स नहीं ब्लास्ट करने हैं। स्वीकार करके वो हमने उस अनुसार बहुत सुंदर रीति से बन गया। और फिर जब वो सारा कार्य शुरू हुआ फिर बाकी ज़मीन जो थी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि देखते हैं कहाँ तक यहाँ फ्रूट कल्टीवेशन हो सकता। तो आज आप मानो कि उस ज़मीन से टन्स ऑफ टन्स फ्रूट्स मिलते हैं। कैसे? गुड वाइब्रेशंस, बस कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, पेस्टिसाइड्स नहीं डाले, गुड वाइब्रेशंस के द्वारा वो ज़मीन अभी इतनी सुंदर बन गई है। न सिर्फ सुंदरता उसके दिखावट में परंतु उसके नेचर में भी इतना हमें सब कुछ दे रही। और वैसे तो ये प्रकृति के परिवर्तन के एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, परंतु जब सेशन चलेगा मैं समझती कल परसों शायद होगा उसमें आपको डिटेल्स बताएंगे, परंतु आजकल हर बात का हम प्रूफ चाहते हैं। तो हर बात का प्रूफ राजयोग के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप भी यहाँ मन की शांति के द्वारा तन के स्वस्थ की स्थिति का अनुभव करके वो अनुभव लेके जाएंगे। आप इतना धीरज से शांति से बैठ करके सुना, अभी 3 मिनट के लिए फिर से हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, फिर मैं समाप्त करती हूँ, फिर और आगे का कार्यक्रम रहेगा। मन को अंदर की यात्रा कराते मैं अपने संकल्पों को देखती हूँ। जो संकल्प पहले इधर उधर घूम रहे थे, संकल्पों को एकाग्र करके वृक्ष के बीच जो मैं चैतन्य आत्मा हूँ उस बिंदु पर एकाग्र करती हूँ। मैं हूँ आत्मा, मेरा असली स्वरूप शांत स्वरूप है, और शांति की स्थिति में शांति का सागर मेरे साथ है। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप कल्याणकारी शिव शांति दाता शांति की किरणें शांति की लहरें हर आत्मा तक पहुंच रही उस शांति के लहरें के आधार पर खुद के अंदर भी ऐसे महसूस होता कि मेरे अंदर भी शांति की शक्ति जमा होती जा रही इस संगठन ने शांति की लहरें इन दीवारों से बाहर परमात्मा सागर के लहरें दूर दूर तक पहुंच रही ताकि विश्व में शांति आती रहे परमात्मा की प्रकाश की शक्ति कलयुग के अंधेरे को समाप्त करके एक सत्यता का संसार शांति सुखमय संसार का आरंभ होता कलयुग की समाप्ति और सत्युग का आरंभ बिल्कुल निकट ही पहुंच गया है सत्यता का संसार तो पवित्र दुनिया को बुद्धि में रखते अभी जिस स्थान पर बैठे हैं जो कार्य चल रहा वहां वापस अपने मन को ले आते परंतु हर रोज तो प्रकाश सत्यता और प्रेम के संसार को याद रखते हर कदम मेरा उस ओर जाता रहे और अनेकों को हम ऐसी ही प्रेरणा देते रहे ओम शांति